ओम शांति। सबने नहीं बोला ओम शांति, ओम शांति। बहुत अच्छा, थैंक यू। अब तो सबका अच्छा आवाज, आप सबको अच्छा लगता है ना ओम शांति कहना। और ये जानते हैं ओम शांति हम क्यों कहते हैं? जो जानते हैं वो हाथ खड़ा करें थोड़े। ओम शांति का अर्थ है ओम माना आत्मा, और मैं आत्मा हूं, ये आपने लेसन लिया है। और आत्मा का नेचुरल नेचर, ओरिजिनल नेचर, जिसे स्वधर्म कहें, शांति है। तो जब हम ओम शांति कहते हैं, मींस आई एम ए पीसफुल सोल, तो ये कॉन्शियस हमारी उस समय सहज हो जाती है। और इसी ही कॉन्शियस को हमें नेचुरल बनाना है। तो ओम शांति कहने से भी और ओम शांति सुनने से भी, रिस्पॉन्स करने से भी, जिसको नहीं मालूम वो भी उस घड़ी अपने को शांत महसूस करता है। तो फायदा हो गया ना ये कहने में, हाँ? चाहे भले आप नमस्ते कहते हैं, राम राम कहते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं, कोई हे हाय कहते हैं, हाँ? परंतु वो सब अच्छा है। और उसके साथ अगर हम ये ओम शांति समझ लेते हैं और उसका ही संबोधन करते हैं तो आपको और अच्छा लगेगा। इसलिए कई बार तो कई जो ब्रह्मा कुमारी इसका नाम जानते हैं लेकिन इतना बहुत समीप नहीं आए तो आम भाषा में कह देते हैं ये ओम शांति वाले हैं। तो कितनी अच्छी बात है ना। तो आप सब भी कौन हो गए? वाह, बड़ा अच्छा आंसर दिया, वेरी गुड। फिर तो ताली बजाइए अपने लिए। तो आप सब ओम शांति वाले हैं, हाँ? क्योंकि ऑलरेडी ये रियलिटी है, क्योंकि आप आत्मा हैं और आत्मा का स्वधर्म शांति है। तो हो गए ना ओम शांति वाले, हाँ? परंतु अभी आपको इसका अनुभव और गहराई से करना है। और यहां आपको ये फुल चांस है। फिर आप अपने कार्य में जाएंगे, करना तो तब भी है, करेंगे भी, परंतु टाइम का फर्क पड़ जाता है, वातावरण का फर्क पड़ जाता है। यहां तो आपको पूरा वातावरण ऐसा ही मिला है, उसका सहयोग भी है और सब कुछ उसके अनुसार आप ग्रहण कर रहे हैं, क्लासेस भी और कंपनी भी और भोजन भी, सब कुछ। तो यहां इसका अनुभव आप जरूर कीजिए कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। तो मुझे तो ऐसे लग रहा है आप सबको देख करके कि रेस्टलेसनेस तो गई गई ना, हाँ गई। अभी सोचेंगे जरूर कि एकदम कैसे चली जाएगी, हाँ? पर ये सच है और ये मैं अनुभव के आधार से गारंटी से कह सकती हूँ कि जिन्होंने भी इन बातों को एकाग्रता से लिया, दिल से लिया और उसका अभ्यास किया तो उनके जीवन में शांति आ गई। और शांति आप सबको पसंद है? बोलिए हाँ जी या ना जी। सबकी हाँ जी है, सबकी। क्यों क्यों हाँ जी है, हाँ? करना है इसलिए हाँ जी है। अच्छा, और क्यों हाँ जी है? अब आप सोच में पड़ गए क्यों हाँ जी। आंसर आपका बिल्कुल ठीक है, हाँ जी ही आंसर है इसका, हाँ? ना जी तो सवाल ही नहीं। वो आंसर दिया करना है, हाँ, या आंसर देंगे चाहिए। और भी कोई आंसर है इसके अलावा कि आपकी हाँ जी क्यों हुई? अच्छा, आप उसी पॉइंट को रिपीट कर रहे हैं, हाँ? हाँ? क्योंकि ठीक कह रहे हैं आप सब, क्योंकि शांति आप सभी को प्रिय है। ठीक है ये, हाँ? आप सबको प्रिय है, चाहिए भी इसीलिए आपने कहा। अगर कोई बात प्रिय नहीं होती तो चाहिए नहीं कहता मनुष्य। छोटे से बच्चे को भी अगर चॉकलेट प्रिय नहीं है तो वो नो कह देता है ना। कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि मुझे इस फ्लेवर की ही चाहिए। तो जो प्रिय होता है, जो कुछ भी, उसके लिए हम कहते हैं चाहिए, होनी चाहिए। तो इसका असली जो फीलिंग्स कहें, भावार्थ कहें, वो यही है कि हर मनुष्य आत्मा को अंदर से उसकी जो चाहत है, अंतर आत्मा जो कहती है, उसे शांति इसीलिए चाहिए क्योंकि उसे शांति अच्छी लगती है। यहां तक कि जो बहुत अशांत रहता है, क्रोध करता है, कंट्रोल नहीं कर पाता अपने ऊपर, आजकल ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, या इरिटेट होता है, हाँ, या टेंशन में रहता है, जो भी ऐसी बातें हैं, हाँ, उसको तो कहना भी अच्छा नहीं लगता इसका विस्तार। अगर उससे भी पूछते हैं ना, भाई देखो आपने ये इतना सब कुछ किया, इतना शोर किया, इतना झगड़ा किया, क्या ये ठीक है, क्या ये आपको अच्छा लगा? कहते नहीं नहीं मेरे को नहीं पसंद। तो क्या पसंद है? नहीं मुझे शांति ही पसंद है। तो फिर किया क्यों? तो क्रोध करने वाला भी, या टेंशन में रहने वाला भी, या बात बात में झगड़ालू स्वभाव वाला भी अंदर से ये पसंद करता है कि मुझे शांति में ही रहना है। कितनी अच्छी बात है ना, ये अच्छी बात है ना। तो सबसे पहले, क्योंकि आजकल ये कॉमन हो गया है, अक्सर करके सब कहते हैं कि मेरे को गुस्सा आ ही जाता है, या मैं टेंशन में ही रहता हूं, या ऐसी जो भी डिस्टरबेंस की, कंफ्यूजन की बातें हैं, तो पहले तो अपने आप को हम ये विश्वास दिलाएं, अपने में ये विश्वास रख कर चलें कि शांति मुझे प्रिय है। तो जो चीज मुझे प्रिय है उसे मुझे अपने पास रखना है। अगर आपसे कोई कुछ मांग भी लेते हैं तो हर व्यक्ति अपनी प्रिय चीज अपने पास रख लेता है, बाकी चाहे दे देता है। और ये तो बहुत सहज है, क्योंकि शांत रहना हमारी अपनी एक नेचुरल ओरिजिनल क्वालिटी है। आत्मा का ये एक गुण है, आत्मा की ये एक शक्ति है, साइलेंस पावर, काम रहना, शांत रहना, और इसीलिए हमको प्रिय है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आप ये कहते ही नहीं कि हमको चाहिए, कहते ही नहीं। फिर तो आप ये कहते कि बहन जी वो क्या होता है, चाहिए कहां? मींस कहीं आपके जहन में, अंतर आत्मा में उसका एहसास तो है, पर वो आपके जीवन में आ नहीं पा रहा। तो जो चीज हमको प्रिय है और उसका एहसास है, तो जरूर वो कहीं किसी कोने में मेरे अंदर दबी हुई है वो बात, छिपी हुई है वो बात, और उसको ही मुझे बाहर लाना है, उसका अनुभव करना है। जैसे देखो हम आपसे पूछें, आपको मैंगो अच्छा लगता है? मैंगो तो हर एक ने खाया होता है, आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जिसने मैंगो नहीं खाया हो, हर एक ने खाया होगा। आजकल थोड़ा एलर्जी हो जाते हैं कहीं तो अलग बात होती है, डॉक्टर मना कर देता है, फिर भी बचपन में खाया होगा। हाँ, और छोटे बच्चे भी पसंद करते हैं, वृद्ध भी पसंद करते हैं। तो हमने अगर पूछा और आपने कहा हाँ बहन जी मैंगो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मीठा, बहुत स्वाद लगता है, तो इससे मैं क्या समझूं कि उसका टेस्ट आपको है। अगर उसका टेस्ट आपको नहीं होता तो आप ये नहीं कह सकते थे कि मुझे मैंगो अच्छा लगता है। फिर तो आप ये कहते बहन जी वो क्या होता है, कैसे होता है, ये प्रश्न आता। और बड़ी ही अच्छी बात है कि आप सबने कहा कि आपको शांति अच्छी लगती है, प्रिय है। तो इसका मतलब है कि शांति आपके अंदर है, इसीलिए आपको अच्छी लगती है। पर वो अनुभव और वो आपके व्यवहार आपके जीवन में हो, ये बड़ा आवश्यक है। जैसे किसी के पास हाँ पूरा ज्वेलरी का सेट हो, हाँ पूरे अच्छी तरह गोल्ड रखा हो, और अलमारी में या लॉकर में, उसके भी लॉकर में अंदर पड़ा ही पड़ा है, बस उसको उसने कभी यूज नहीं किया, देखा नहीं, पहना नहीं, तो उसके उस पे वो रुहाब भी नहीं आता, उसके मुख पे उसका वो भाव भी नहीं आता। फर्क पड़ जाता है ना उस चीज का, एक चीज बंद पड़ी है उसको यूज ही नहीं किया। तो हमको शांति का जीवन में अनुभव करना है, और वो अनुभव भी हम तब कर सकते हैं जब हमें ये मालूम हो कि शांति मेरा ही गुण है। जैसे आप उस सोने को अगर अलमारी में पड़ा है ये पता भी ना हो तो आप उसको यूज भी नहीं कर सकते। तो पता होता है तब तो आप टाइम पर उसको निकलवा करके और आप पहन सकते हैं और आपको अच्छा लगेगा, खुशी होगी, पर पता ही ना हो। तो ये जानकारी अभी मिल रही है कि शांति मुझ आत्मा का गुण है। इस पे एक बड़ी अच्छी छोटी सी स्टोरी आती है, हो सकता है आप में से कईयों ने सुनी भी हुई हो, कि एक रानी थी और राजा ने उसको सबसे महंगा 9 लक्खा हार बनवा के दिया हुआ था। तो वो स्नान के समय उतार के रख देती थी, एक बार भूल गई और वो ढूंढने लगी मेरा हार कहाँ है, मेरा हार कहाँ है। तो शोर मच गया दासियों में भी, आवाज राजा तक पहुंच गई, तो राजा ने सारे में ढिंढोरा पिटा दिया कि रानी का इतना महंगा हार खो चुका है, जिस किसी को भी मिले उसको इस इनाम के साथ वो वापिस कर दे, इनाम मिलेगा। तो थोड़ी देर बाद जब रानी श्रृंगार करने गई, शीशे के सामने पहुंची, तो जो हार था वो तो उसके गले में ही पड़ा हुआ था, परंतु उसको उसकी विस्मृति हो गई थी क्योंकि उसने उतारा ही नहीं, रखा ही नहीं, तो वो मिला भी नहीं। तो ठीक इसी प्रकार से आज मनुष्य आत्माओं को इस बात की स्मृति नहीं है कि शांति मुझ आत्मा का ही गुण है, मुझ आत्मा की ही विशेषता है। आपने आत्मा का लेसन तो लिया है और उसमें ये बताया है आप सभी को कि ये शरीर पांच तत्वों का पुतला है, विनाशी है। आज तो साइंस ने भी इसको प्रमाणित कर दिया है। और इसको चलाने वाली चैतन्यता, जिसको हम आध्यात्मिक भाषा में आत्मा कहते हैं, और आज मेडिकल साइंस उसको एक एनर्जी कहती है, जो बहुत सूक्ष्म है, पॉइंट है, और जब शरीर से निकलती है तो दिखाई भी नहीं देती, लेकिन क्योंकि वो चैतन्य है, उसके चले जाने से शरीर जड़ हो जाता है, डेड डिक्लेयर हो जाता है। तो जो मैं आत्मा हूं, जिसका काम सोचना है, जिसका काम निर्णय करना है, जिसका काम इन कर्मेंद्रियों से कर्म करना है, उसकी नेचर शांत है। और आत्मा ही इन कर्मेंद्रियों से कर्म कर रही है। तो सबसे पहले मुझ आत्मा को अपने आप को काम रखने के लिए कि मैं एक ऐसी फीलिंग में, एहसास में रहूं कि बस मैं टेंशन से फ्री हूं, कोई बोझ नहीं मेरे ऊपर मन का, कोई प्रकार की सोच चिंता वाली नहीं। तो इसकी सबसे सहज विधि पहले ये है कि हम अपने सोच को देखें कि हम क्या क्या सारा दिन सोचते रहते हैं, सारा दिन। और सोचना एक नेचुरल प्रक्रिया है। हम ये नहीं कहते कि आप सोचो ही नहीं, सोचना तो स्वाभाविक है, क्योंकि ये आत्मा की एक नेचुरल नेचर है, जिसको मन कहते हैं। मन मीन्स ही थिंकिंग पावर। अब मन को ही शांत रखना चाहते हैं तो जरूर है पहले मुझे अपनी थिंकिंग को देखना होगा कि मैं किस प्रकार की थिंकिंग करती हूं, मेरा सोच कैसा है। अब जो सोच अक्सर करके मनुष्य का चलता है, क्योंकि कुछ ना कुछ उसे सोचना है। अब चाहे वो आंखों से जो देखता है वह सोचता रहता है, चाहे उससे कोई काम नहीं है उसका। अब मान लिया जब मैं यही सोचती रहूं, ये जो पीछे व्यक्ति बैठे हैं ना, ये क्यों पीछे बैठे हैं, इनको ये भी नहीं मालूम कहाँ बैठना है। अब वो बेचारों की मजबूरी है, कोई कारण होगा, लेकिन मैं वेस्ट थिंकिंग कर रही हूं सपोज। या ये जो दरवाजा है ना, ये ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए। अब ये मेरा काम नहीं है, लेकिन मैं वेस्ट सोच रही हूं, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, ऐसा हो, वैसा हो, ये जबकि मेरी जॉब नहीं है, मेरा सरोकार नहीं है। परंतु ये मनुष्य की एक आदत पड़ गई है कि वो बहुत कुछ सोचता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है, और उससे अपने आप से ही वो भारी हो जाता है, क्योंकि उसने इतना एक्स्ट्रा सोच लिया, इतना एक्स्ट्रा सोच लिया जिस किसकी जरूरत नहीं थी। जैसे आप देखो, हम तीन टाइम भोजन करते हैं, या कोई दो टाइम करता है, या डॉक्टर उसको छह टाइम थोड़ा थोड़ा खाओ सजेस्ट करता है, उस विधि के अनुसार भी चलते अगर वो एक्स्ट्रा खा लेता है, एक्स्ट्रा सब कुछ, चाहे वो किसी भी कारण से, वो क्या होगा, उसने एक्स्ट्रा लोड कर लिया अंदर शरीर में, और वो रोज की रूटीन में कर लिया, चलो एक दिन कर लिया और अगले दिन फिर अपने को सेट कर लिया तो भी चलो ठीक है, लेकिन अगर रोज करता रहे तो धीरे धीरे रोग बन जाता है, कई रोग निकल आते हैं। हाँ, अपच हो जाएगा, एसिडिटी हो जाएगी, क्या क्या हो जाएगा, आप सब जानते हैं इन बातों को। तो मैंने सारा दिन इन आंखों से जो कुछ देखा, क्या वही देखा जिसकी जरूरत थी, या जिसकी जरूरत नहीं थी मुझे मैंने वो भी देखा, तो जब मैंने वो भी देखा तो वो सोचा, सोच चलता रहा। सोचना मीन्स ही थॉट्स का चलना। तो मैंने एक्स्ट्रा थॉट्स किए, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। ऐसे ही सुनना, ऐसे ही बोलना, ऐसे ही कोई चीज का टेस्ट लेना, ऐसे ही कुछ भी सूंघना, ऐसे ही कर्म में आना, व्यवहार में आना, लेना देना। अब मैं इसका डिटेल नहीं करना चाहूंगी, आप सब बहुत बुद्धिजीवी बैठे हैं, आप सब कुछ अच्छी तरह से समझ सकते हैं और समझ भी रहे हैं। तो ये जो हमारा सारा दिन कर्मेंद्रियों से सोचने का, देखने का, सुनने का, बोलने का, चखने का, स्पर्श करने का एक्स्ट्रा होता रहता है, वही हमारे मन में एक बहुत बड़ा बोझ बनकर हमारे अंदर हमारी शांति को फील ही नहीं होने देता। आप ये अंतर यहां अच्छी तरह महसूस कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपकी दिनचर्या, आपका रूटीन सारा और वायुमंडल सारा और जो कुछ आप यहां सुन रहे हैं, वो क्या सुन रहे हैं वो आप समझ ही रहे हैं इस बात को। तो हमें सबसे पहले अपने आप को इंट्रोवर्टनेस करना होगा, अंतर्मुखी बनाना होगा, कि हम ऐसी वो सारी बातें जो एक्स्ट्रा है, जिसकी मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि आज साइंस के साधन भी ऐसे मिल गए हैं। अभी देखो मनुष्य फ्री होता है तो क्या करता है, मोबाइल निकालेगा और कुछ कुछ देखेगा। फ्री इन द सेंस कि वैसे तो चलो मोबाइल से आप काम भी कर रहे हैं, कंप्यूटर से काम भी कर रहे हैं, जो भी साधन है, मीडियम है, तो उससे आप अपना काम भी ले रहे हैं। लेकिन जब काम फिनिश हो जाता है उसके बाद क्या करते हैं, कितना कुछ हम ग्रहण कर लेते हैं, कितना कुछ इधर उधर बात करके कॉल करेंगे, अच्छा चलो उनका हालचाल ही पूछते हैं, चलो यही पूछते हैं वो कहाँ गए हैं। अब जैसे सुना कि वो कहाँ गए और आपको वो प्रिय नहीं है, तो एकदम वो माइंड में हथौड़े की तरह लगता जाके। तो ये सारी बातें भी हमारी अंतरात्मा को हलचल में लाती हैं। एक बार एक राजा था, बहुत अच्छा था और बहुत अच्छी उसकी सारी राज कारोबार चलती थी, प्रजा भी उसकी संतुष्ट थी, परिवार के सदस्य भी उससे संतुष्ट थे। लेकिन वो भक्त था और एक देवी की पूजा करता था। तो जब वो पूजा करता था तो बड़ी निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ, तो उससे देवी प्रसन्न हुई। और एक दिन देवी उसके पास, वो प्रातः प्रातः ही किया करता था जल्दी सवेरे, तो वो प्रकट हो गई और उसने कहा, हे राजन, मैं आपकी इस साधना से बहुत संतुष्ट हूं, आज मैं तुम्हें वरदान देने आई हूं। तो राजा ने कहा, आपके दर्शन हो गए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा राज खजाना भी भरपूर है, परिवार भी सब आज्ञाकारी है, प्रजा भी बहुत खुश और संतुष्ट है। तो देवी ने कहा, फिर भी क्योंकि मेरा काम है तुम्हें वरदान देना, तुम्हारी तपस्या का, साधना का फल देना, तो तुम कुछ भी मांगो। तो वो सोच में पड़ गया, क्योंकि उसने कुछ ऐसा सोचा नहीं था और उसको कुछ चाहिए भी नहीं था। तो देवी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं कल फिर आऊंगी। तो तब तक वो सारा दिन उसको मिल गया। तो उसको आया कि ऐसे तो मैं क्या चीज मांगू, मेरे पास तो कोई कमी नहीं है किसी चीज की, आखिर मैं क्या कहूं। तो उसके मन में ये शुभ भावना थी, अच्छा भाव था, कि मेरी राज कारोबार जैसे चल रही है वो और अच्छी चले, मेरी प्रजा और अच्छी रहे, तो मुझे मालूम चलता रहे क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है, कैसे होना चाहिए, और मेरे को उसका ज्ञान रहे, हर एक्टिविटी का पता रहे, तो मैं शायद इसको और अच्छा चला सकता हूँ। तो ये सोच करके उसने रखा। और अगले दिन जब देवी प्रकट हुई तो कहा, बोलो राजन। तो राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, यूं तो मेरे पास सब कुछ है, लेकिन आप मुझे वरदान देना चाहती हो तो यही दो कि मैं सब कुछ अच्छा चला सकूं अपना राज कारोबार, तो मुझे सब कुछ पता चलता रहे, कहां क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्या और ध्यान देना चाहिए, सब एक्टिविटीज की मेरे को नॉलेज रहे। तो देवी ने कहा, तथास्तु, और वो वरदान देकर चली गई। उसी घड़ी से राजा को पता चलने लगा कि जो मेरा मंत्री है वो क्या सोचता है, और उसको मैंने फलाने देश में भेजा है इस कारोबार के लिए, लेकिन वहां तो वो उस कारोबार के साथ साथ राजा के साथ अपनी भी कुछ बातें कर रहा है और कुछ और ही प्लान कर रहा है। उसको वो सब दिखाई देने लगा। ऐसे ही अन्य बातों में भी कि राजकुमार जो है वो शिकार खेलने गया था, लेकिन वो तो उसकी जगह कहीं और चला गया है। ऐसे ही रानी के बारे में भी, ऐसे ही अन्य बातों के बारे में भी, तो उसको अंदर ही अंदर बहुत चिंता होती जाए, अंदर ही अंदर उसको बहुत सोच चलता जाए, बड़े माइंड में नेगेटिविटी भरती जाए और एकदम अजीब अजीब फीलिंग्स उसको आना शुरू हो जाए। तो उसे समझ ना आए कि मैं ये क्या सुन रहा हूं, मैंने तो समझा था कि मेरा राजकुमार बेटा बड़ा आज्ञाकारी है, मुझे तो आज तक ये पता ही नहीं थी ऐसी बात कि मुझे कुछ और कह के गया और पहुंचा कहीं और हुआ है। तो राजा की इस चिंता के कारण रात को नींद नहीं आए और बीमारियां लग गईं। अब किसी को भी इस रहस्य का मालूम नहीं था और सब हैरान, रानी भी हैरान कि अच्छा भला मेरे साथ इतने प्यार से चलते थे, इतने प्यार से रोज बैठते थे, सारी बातें सुनाते थे, अब वो भी बंद हो गई हैं, क्या ऐसा हो गया है। तो वैद्य बुलाए, एक वैद्य आया, दूसरा वैद्य आया, सब ने अपनी दवाई ट्राई की, समझ ही ना आए किसी को कि क्या होता चला जा रहा है। अब असली बात तो अंदर ये हो गई, जो आप समझ रहे हैं ना, कि जो कुछ नहीं जानना चाहिए था, जो कुछ आज तक उसने कभी सोचा नहीं था, उसको उसकी आवश्यकता ही नहीं लगी थी, और अब वो एक्स्ट्रा सारी बातों की जानकारी उसको होनी शुरू हो गई। चाहे वो सच भी थी कई बातें, परंतु राज कारोबार तो उसकी तब भी ठीक चल रही थी। तब जब ये सारा कुछ हो गया, तब राजा ने वो रहस्य खोला कि ऐसे ऐसे मैंने देवी से वरदान मांगा था और मुझको इस प्रकार से अभी सारी बातों का मालूम होने लगा और मेरा ध्यान जाता है कि ये हो रहा है, वहां ये हो रहा है, प्रजा में ये हो रहा है, तो मेरे को सारा समय वही चिंतन, वही प्रेशर और उसकी इतनी टेंशन और मेरा माइंड इतना डिस्टर्ब हो चुका है कि मैं अब राज कारोबार संभालने लायक भी नहीं रहा हूं, मुझे जीवन से अब खुशी नहीं, मैं निरासक्त होता चला जा रहा हूं। और उसने निर्णय ले लिया कि अब मुझे ये राज कारोबार नहीं संभालनी है। तो फिर उसने देवी को याद किया, देवी को पुकारा कि मैं तो बहुत परेशान हूं और मैंने तो आपसे वरदान मांगा था। देवी ने कहा, तुमने अपनी इच्छा जाहिर की तो मैंने ये वरदान दिया। और उसके बाद देवी ने वो वरदान उससे वापस ले लिया उसकी परेशानियों को देखते हुए। और राजा ने भी अपने दिल से निर्णय ले लिया कि अब मुझे ये सब कुछ नहीं संभालना है। तो कहने का भाव अर्थ ये है कि जब हम मनुष्य आत्माएं अपने जीवन में, क्योंकि ये जीवन तो शांति से जीने का है, अशांति से नहीं। ये जीवन आनंद से जीने का है, दुविधा से नहीं, परेशानी से नहीं, क्योंकि ये हमारे सोच पे ही सब कुछ डिपेंड करता है कि हम क्या सोचते हैं और हर चीज को किस एंगल से देखते हैं, और तब ही मन पर बोझ चढ़ता चला जाता है। तो हमको इसलिए इस बात का जीवन में ध्यान रखना बड़ा ही आवश्यक है कि हमारी सारी दिनचर्या में हमने इन कर्मेंद्रियों का इस्तेमाल किस ढंग से किया और कितना किया। उससे हमारा समय भी बचता है, हमारी एनर्जी भी सेव होती है, हमारे थॉट्स भी सेव होते हैं, हमारे को बहुत कुछ और अच्छा सोचने का मौका मिलता है, और हमारे मन की शक्ति भी बढ़ जाती है। नहीं तो देखो, जिस चीज को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है वो जल्दी खराब हो जाती है, कोई भी चीज आप देख लो। तो मन, क्योंकि बहुत सारा चिंतन करके 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 मन और कमजोर पड़ता चला जाता है, उसको कितने ज्यादा झटके लगते रहते हैं सारे दिन के अंदर। कई कई बातें ऐसी होती हैं जो ना सुनो तो अच्छा है, लेकिन सुन करके भी कितने झटके लगते हैं। कई हमको अपना एक्सपीरियंस आके सुनाते हैं, हम तो ये न्यूज सुन सुन के आज दुनिया की फला जगह ये हो रहा है, फला जगह ये हो रहा है, तो जैसे मन दुखी होता है, अंदर से परेशान होता है, हमने सुनना ही बंद कर दिया है। लेकिन जो आवश्यक है, जितनी आपकी कारोबार है, जितना आपको चाहिए, उसे एज ए ड्यूटी जरूर कीजिए, क्योंकि आपको अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ना है। तो हम ये नहीं कहते हैं कि आप सुनना छोड़ दो, बोलना छोड़ दो, आपका तो प्रोफेशन ही ऐसा है कि आपको सब बातों में निर्णय लेना पड़ता है। हाँ, सब चाहे परिवार की ही सिर्फ बात नहीं है, आप सोशल उसमें हैं और ये कितना सब कुछ आप सेवा देते हैं समाज को, परंतु आप बुद्धिजीवी हैं कि कितना मेरे लिए आवश्यक है। एक्स्ट्रा ये सब कुछ करने से हमारी आत्मा की शक्तियां चली जाती हैं। इसलिए जितना हम अंतर्मुखी रहते हैं, इसको अंतर्मुखता कहा जाता है, कि अपना ध्यान अंदर की ओर लेके आए, बाहर की ओर ना लेके जाएं। अर्थात जितना आवश्यक है उतना देखें, सुने, बोलें, सब कुछ करें, परंतु अपने आप को, अपने थॉट्स को, अंतर आत्मा को हलचल से बचाने के लिए अपना ध्यान अंदर की ओर लेकर आएं कि मेरा जो ओरिजिनल नेचर है वो शांति है, और शांति मेरी आत्मा का गुण है, शरीर का गुण नहीं। क्योंकि ये शरीर पांच तत्वों का है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, और ये आप अच्छी तरह से ही जानते हैं। हाँ, ये विनाशी है और परिवर्तनशील है, और हर चीज में आवाज है, इसीलिए ये सारा संसार वास्तव में आवाज की दुनिया। आप जंगल में भी चले जाएंगे ना तो भी आपको साए साए ये आवाज आएगी, हवा में भी आवाज है। आप सागर के पास भी चले जाएंगे ना तो भी आपको सागर की भी आवाज आएगी, क्योंकि पांच तत्व है ही आवाज के। इसलिए देखो मुख भी ऐसे ही बना हुआ है, ऊपर तालू बना हुआ है, जैसे आकाश ऊपर है, बीच में गैप है तो हम बोल सकते हैं। परंतु जो आत्मा है इससे अलग, चैतन्य सत्ता, इमॉर्टल, वो पीसफुल है। तो मुझे जरूर है अपनी कॉन्शियस को बार बार ऐसा बनाना आवश्यक है कि मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा हूं, और मेरा जो गुण है वो शांति है। दूसरी एक बात यह है कि मनुष्य को एक आदत हो जाती है कि पास्ट की बातें बहुत सोचता है, और हमको अपने आप को शांत रखने के लिए पास्ट की बातें भी एक एक्स्ट्रा काम करती है। और ये बड़ी सिंपल सी बात है, और आप सब जानते हैं इस बात को अच्छी तरह से। कहते भी ये पास्ट इस पास्ट है, जो बीत गया वो तो चला गया, वो बीत चुका है, अब बीता हुआ वापिस नहीं आता, यह आप अच्छी तरह से जानते हैं, सब जानते हैं ना, बोलिए जो जानते हैं इस बात को वो हाथ खड़ा कीजिए, सब जानते हैं, देखिए सब जानते हैं। लेकिन आज मैं आपसे ये प्रश्न दे रही हूं कि आप जानते हैं परंतु आप पास्ट सोचते हैं, सोचते हैं ना, कितना सोचते हैं, बैठे प्रेजेंट में, वो मैं बताती हूं, प्रेजेंट में बैठे हैं, पास्ट का चिंतन कर रहे हैं आप, और वो पास्ट लौट कर नहीं आना। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जो पास्ट आपने बिताया उससे आपने एक्सपीरियंस लिया, चाहे अच्छा लिया चाहे खराब लिया, दोनों ही आपके काम में आने वाली बातें हैं, अच्छा है तो भी खराब है तो भी, लेकिन आपने एक्सपीरियंस कर लिया ना। अभी सपोज आपने रसगुल्ला खाया हाँ, या कुछ मीठा खाया, आपको अच्छा लगा, आप खा चुके हैं ना, आपने महसूस कर लिया बड़ा अच्छा था, चलो आप उसको कहेंगे बड़ा अच्छा था, तो आप क्या सारा दिन कहते रहेंगे बड़ा अच्छा था, क्या और कुछ कहने के लिए नहीं है, या वो सारा दिन कहना आपके हिसाब से कितना कैसा लगता है, मैं क्या शब्द कहूं हाँ? और कोई आपका बहुत नजदीकी होगा, हाँ एक्सेस तो है ही बैड ना, तो आपका नजदीकी जो प्रिय होगा वो कहेगा भाई आप एक बार कह चुके हो ना, हमने समझ लिया कि आपको बहुत अच्छा लगा, बस बस। तो बार बार वो कहना ना खुद के लिए शोभायमान होता है ना दूसरे को सुनने वाले को अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से ये तो छोटी सी बात है, बड़ी बड़ी घटनाएं भी घटती हैं, बड़े बड़े केसेस भी आपके सामने आते हैं, वो हमें सबक देके जाते हैं, एक लेसन देके जाते हैं, और उस लेसन को हमने समझ लिया बस, और उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेजेंट में और फ्यूचर में अच्छे के लिए। लेकिन जो चीज हमारे काम की ही नहीं है, जिसकी आवश्यकता ही नहीं है, और अगर है भी तो जब जरूरत पड़ेगी तब है, परंतु मैं उसका चिंतन अब भी करती रहूं तो वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ एनर्जी है, और उससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला, और उससे मेरी अपनी ही शक्तियां कम होती चली जाएंगी। तो ये बहुत जरूरी है, हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो फुल स्टॉप लगाइए। कुछ भी आप लिखते हैं एक सेंटेंस के बाद दूसरा, आपको आगे कलम ले जाना है, आगे कुछ भी टाइप करना है, आपको फुल स्टॉप देना पड़ता है। तो जो हो चुका अब तक भी, हमको परमात्मा का ये कहना है वर्षों पहले तो छोड़ो, कल वाली बात भी छोड़ो, अब भी जो हो चुकी है फुल स्टॉप। ये हमारी कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाता है, जिससे ही हमारी थिंकिंग बहुत पावरफुल हो जाती है, बल्कि कई तो फिर इतना मन में रख लेते हैं, दिल में रख लेते हैं कि किसी के साथ कोई घटना घटी या कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा या किसी रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, कहते मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा इसको। तो अब आप सोचिए आप दिल पर क्या क्या छाप डालते जा रहे हैं, क्या क्या बोझ रखते जा रहे हैं। तो वो नुकसान उसको नहीं हो रहा, वो नुकसान मुझको हो रहा है कि मैंने स्वयं ही अपने जीवन पर अपने दिल में उन बोझों को रख करके जी रही हूं। तो लाइटनेस नहीं रहती, तो जब लाइटनेस नहीं रहती है तो आप सोचिए आप पीसफुल कैसे होंगे, तो आप खुश भी कैसे रहेंगे। तो बोझ तो मैंने खुद ही अपने अंदर डाला। तो ऐसी बहुत सारी बातों से चाहे वो नफरत के कारण हो, ईर्ष्या के कारण हो, रीस के कारण हो, बदला लेने की भावना के कारण हो, ये सारी बातें भी कारण बनती हैं जो हमको शांत नहीं रहने देती, और उसे हम अपना अधिकार समझ के चल रहे हैं, उसको हम अपनी प्रॉपर्टी बनाकर चल रहे हैं कि ये तो बड़ा जरूरी है, मुझे ईर्ष्या तो होगी ही होगी। लेकिन आप इतिहास देखो, इतिहास तो छोड़ो, जीवन का अनुभव देखो, जिसने भी ऐसा किया उसको मिलता कुछ नहीं है सिवाय अपनी खुशी गायब करने के, और कुछ भी नहीं, सिवाय अपनी शक्तियां कम करने के, और कुछ भी नहीं। कहानियां भरी पड़ी हैं इस बात की कि उससे अप डाउन ही हुआ, हलचल में नीचे ऊपर, और धीरे 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 आत्मा नीचे आती है, कमजोर होती चली जाती है। हमको इसलिए परमात्मा एक बहुत अच्छा स्लोगन देते हैं, किसी से रीस मत करो, रेस चाहे करो। रेस इन द सेंस कि मुझे पुरुषार्थ अच्छा करना है, एफर्ट अच्छा करना है, मुझे जिंदगी में कुछ बनना है तो जरूर मेरे को अपनी काबिलियत को यूज करना है, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि वो कर रहा है इसलिए। तो जो ये भाव आ जाएगा तो मन शांत नहीं रह पाएगा, फिर तो आपकी नजर, आपका सोचना, सब कुछ उसी व्यक्ति के ऊपर ही सारा कंसंट्रेशन हो जाएगा, टारगेट ही वही बन जाएगा। तो आपका लेवल क्या रहा? तो आपने अपना लेवल तो खुद ही कहां ले आई? और जबकि हम सब ईश्वर की संतान हैं, और उसकी संतान होने के नाते पिता आपको अधिकार देता है कि मैं सर्वशक्तिवान हूं, तो आप फिर से शक्तियां लो, और वो शक्तियां लेने की ही विधि आपको यहाँ राजयोग का माध्यम, राजयोग बताया जा रहा है, जो अन्य सभी योगों से भिन्न है, क्योंकि इसमें हम क्रिएशन का, उस क्रिएटर के साथ कनेक्शन हो जाता है, और हम सहज ही अपने जीवन के अंदर उन सब प्राप्तियों को कर सकते हैं। तो ये सारी बातें भी हमें काम नहीं रहने देती है, रेस्टलेस कर देती है एकदम, जबकि शांति हमारे लिए बहुत ही जीवन का एक बहुत बड़ा उपहार है जो जिंदगी को आनंदमय बनाता है। तो मैं अपनी शांति को स्वयं ही गंवा रही हूं, और सबसे बड़ी बात, मैं हूं ही शांति के सागर की संतान, तो मैं सहज शांत रह सकती हूं। लेकिन हां, क्योंकि ये समय कलयुग अंत का चल रहा है, और सारा आप संसार का वातावरण अच्छी तरह से जानते हैं, जैसे रात का समय अंधेरे का होता है, तो हमें किस विधि से चलना है ये हम समझते हैं ना। सुबह का समय क्या है, हमें उठना ही है, हमें कारोबार में जाना ही है, हम समझते हैं ना। तो ऐसे ही ये कलयुग का समय एकदम, जिसको आज तो घोर कलयुग कहा जाता है, एकदम चारों ओर तमो प्रधानता का समय है, पांचों विकारों का समय है, और इसमें कई बार क्या है ही कि हम सब का कहीं ना कहीं कोई ना कोई कर्म का खाता भी सामने आता है। कर्म फिलॉसफी भी हमें समझकर चलनी बहुत जरूरी है। मैं इसका विस्तार अभी आपके सामने नहीं करूंगी, मैं इसलिए ये बात सुना रही हूं कि हो सकता है आपके मन में ये आ रहा हो कि बहन जी, मैं तो शांति रहता हूं अपनी तरफ से, मेरे अंदर किसी के प्रति कोई नफरत, ईर्ष्या, द्वेष नहीं है। राइट, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, परंतु फिर भी मेरे आगे ये समस्या है कि फला आत्मा या फला बातें या फला परिस्थिति मुझे बार बार उल्टी ओर ले जाती है, अशांत बनाती है, मन में कैसे कैसे ख्यालात लाती है, मैं कहां तक टॉलरेट कर सकता हूं। یا کر سکتی ہوں. تو اس کے لیے یہ ضروری ہے, جیسے دیکھیے ہم کسی سے ادھار لیتے رہتے ہیں کافی ٹائم, اور ضرور ہے ہمارے من میں یہ رہتا ہی ہے کہ یہ ادھار ہے اور مجھے دینی ہی پڑے گی, آج میں نہیں دے رہا, کل نہیں دوں گا, کب تک نہیں دوں گا, اچھا نہیں بھی دوں گا تو اس ادھار کے سوچ کا بھی پریشر میرے اوپر ہے, وہ سوچ ہی اپنے آپ میں پریشر ہے. تو ٹھیک اسی پرکار سے میں اس ادھار کی بات نہیں کر رہی پیسے والے, لیکن ہمارے کچھ کئی جنموں کے کارن, کیونکہ یہ انڈین فلسفی ہی کہتی ہے اور بھگوان نے تو ہمیں سپشٹ بتایا ہے کہ آتما ایک شریر چھوڑ کر دوسرا لیتی ہے, تو ہم جہاں بھی جن آتماؤں کے ساتھ بھی جنم لیتے چلے آئے ان کے ساتھ ہمارے سمبندھ بنتے ہیں, اور کہیں نہ کہیں کوئی کوئی ہمارے کرم کے حساب بھی ہوتے ہیں. تو آپ کو ایک کرم فلسفی کا بھی لیکچر بہت اچھا ملے گا, تو وہ ہم کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ڈھنگ سے ہمارے سامنے پریشانیاں پیدا کرتے ہیں. اب وہ میں مثال اتنے سارے ابھی سمے کو دیکھتے ہوئے آپ کو نہیں سنا پاؤں گی. سپوز جیسے کوئی کہتا ہے کہ میرا بیٹا ہی آگیاکاری نہیں نکلا, جس کے لیے میں نے اتنا کچھ کیا زندگی میں, کتنی محنت کی اس کو پڑھانے لکھانے میں, یہاں تک کہ یہ کیا یہ کیا, آج وہی ہی مجھے دھوکہ دے رہا ہے, یا انیہ کوئی بھی بات. میں نے ایک صرف مثال دی ہے, ضروری نہیں یہی بات ہو, کوئی اور بھی ہو سکتی ہے. تو اندر میری ہلچل رہتی ہے, میں شانت رہ ہی نہیں سکتا, مجھے نیند نہیں آتی ساری رات, بڑا بے چین رہتا ہوں, اور جہاں بھی جس کے سامنے آئیں گے ترنت اس کو یہی تھاٹ آئے گا, اور بولیں گے بھی ضرور ہے, سنائیں گے بھی, دیکھو نا اور تو سب کچھ ٹھیک ہے, یا میری سنتان ہی ایسی نکلی ہے, یا میرا پڑوسی ایسا نکلا, یا گھر میں بہو ایسی آئی تو ہوا, یا میرا کلائنٹ ہی ایسا ہے, یا میرا باس ہی ایسا ہے, اینی ٹائپ آف پرابلم. تو ہم کو یہ سمجھ کر چلنا ہے کہ ضرور اس منشیہ آتما کے ساتھ میرا کوئی کسی جنم کا کرم کا کھاتا بنا ہوا ہے. بس اب آپ اس چنتن کو سٹاپ کیجئے. جب آپ کی طرف سے سٹاپ ہوگا تو دوسری طرف سے بھی سٹاپ ہوگا. جیسے دیکھو آندھی طوفان آتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں, آندھی آ رہی دروازے بند کر لو. ہم یہ تھوڑا کہتے ہیں آندھی ایسے جا, ہم کہتے ہیں پہلے دروازے بند کر لو. ایسے کہتے رہیں گے ایسے جا ایسے جا, وہ تو اپنے ٹائم پہ ہی جائے گی. دروازے بند کریں گے تب بھی وہ اپنے ٹائم پہ ہی جائے گی, نہیں کریں گے تو آپ کے اندر ہی پرویش کر کے سارا گھر گندا کر کے جائے گی, جائے گی تب بھی. تو کیا میں نے اپنا من روپی دروازہ بند کیا؟ تو شانتی ہوگی. یہ نہیں کہ میں اپنی ڈیوٹی چھوڑ دوں, لیکن میں اس بات کے چنتن کو بار بار من میں نہیں رکھوں, اور وہ تب سمبھو ہے, اس کی سہج ودھی ہے کہ میں اپنے چنتن کو چینج کر دوں, اپنے رخ کو چینج کر دوں. اور وہ یہی ہے کہ ہم اس آتما کے لیے بھی گڈ وشز دینا شروع کر دیں, چاہے وہ رونگ ہے پر آپ تو رائٹ ہے نا, گڈ وشز دیں. یہ طاقت چاہیے, اسی لیے ٹاپک بھی اسی لیے اسپریچل امپاورمنٹ کا رکھا ہے, کیونکہ اس سے یہ طاقت آتی ہے. جب ہم ریئلائز کرتے ہیں اور جیون کی ستیتا کو سمجھ لیتے ہیں, اور یہ سمبھو ہے, ایسا نہیں ہے یہ اسمبھو ہے یا یہ کٹھن ہے, نہیں, ہم اس کے لیے گڈ وشز دے, تم سکھی رہو, تمہارا بھلا ہو, تم آگے بڑھو, میرا تمہیں سہیوگ ہے, मैं सदा यही चाहता हूं कि तुम्हारा जीवन अच्छा हो, गुड विशेष दो, अपना टाइम वेस्ट नहीं करो, एनर्जी वेस्ट नहीं करो, धन वेस्ट नहीं करो, उसको सोच समझ के उसी लिमिट में ही यूज करो, लेकिन आप अपने दिल की भावनाएं, अपने सोच को पॉजिटिव रखो, वो नेगेटिव आने ही नहीं दो, चाहे वो कितना ही गलत कर रहा हो। पर मैं भी अगर नेगेटिव सोचती हूं तो मैं अपनी भी एनर्जी वेस्ट कर रही हूं और उसको भी कोई लाभ नहीं दे रही, क्योंकि वो तो सेटिस्फाइड ही नहीं है। तो दोनों तरफ से क्या हो चला जाएगा। आपने देखा होगा जब राम रावण का युद्ध भी दिखाते हैं ना, तो उधर से रावण तीर चलाता है, इधर से राम तीर चलाता है, तो रावण का तीर वापिस चला जाता है। ये तो एक स्थूल मिसाल है, कोई तीर की बात नहीं है। तीर मीन्स थॉट, मेरा थॉट ऐसा जाए, इतना पॉजिटिव, इतना गुड विशेस वाला, जो उसका वो वेस्ट नेगेटिव काम नहीं करे। तो यही हमारी स्पिरिचुअलिटी मीन्स, यही आर्ट है, यही रियलिटी है। तो इससे हम सहज शांति का जीवन, सुख का जीवन अनुभव करते हैं, अपना भी और औरों का भी। शुभ भावनाएं दें। और इसके पीछे राज ये है कि वो मेरे ही भले के लिए जमा होता चला जाता है, क्योंकि दिया मैंने ना, तो जो दिया है वो लौट के आता है। ये भी कर्म फिलॉसफी है, क्योंकि दिया किसने, करने वाली कौन है, आत्मा। शरीर तो कर नहीं सकता ना, डेड बॉडी सोच सकती है क्या, है डेड बॉडी बोलती है कि आप क्यों रो रहे हो जी, बोलती है क्या, उसको तो पता ही नहीं होता कुछ, क्योंकि जिसने देखना है, सुनना है, अनुभव करना है, वो तो आत्मा चली गई उसमें से। तो कहने का भाव है कि मैं सोचने वाली तो मैं आत्मा ही हूं, तो जब मैं खुद ही अच्छा सोच रही हूं तो मेरे ही अकाउंट में वो जमा हो रहा है ना। इसलिए कहते हैं ना, जो करेगा सो पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा, ये एक नियम है, ये जितना करेगा उतना पाएगा। कौन कौन, मैं स्वयं और हर एक ऐसे। तो मैंने गुड विशेस दी, मैंने पॉजिटिव थॉट रखा, मैंने नेगेटिव नहीं सोचा, चाहे उसका अगले का मुझे कितना भी नेगेटिव आ रहा है, तो मेरे ही अकाउंट में, क्योंकि मैं ही सोचने वाली हूं, तो जैसा मैंने सोचा वैसा मुझे मिलेगा। तो मैंने अच्छा सोचा, सबका भला हो जाए, सब सुख पाए, एक सिर्फ मुख से बोलने की बात नहीं है, परंतु मेरी अंतरात्मा ये चाह रही है कि आप सब सुखी हो जाएं, तो वो मेरे अकाउंट में जमा हो रहा है। तो जब हम इतनी गहराई को समझ जाते हैं तो गुड विशेस देने में आपको खुशी होगी, तकलीफ नहीं होगी। कोई कोई कहते हैं वाह बहन जी, वो हमारा बुरा करता रहे, हम उसके लिए अच्छा सोचते रहे, ये तो बड़ा कठिन लगता है, ये तो बड़ा मुश्किल है, बड़ा असंभव है ये तो। लेकिन जब आप इस फिलॉसफी को समझ जाएंगे, आपको जरा भी कठिन नहीं लगेगा, जरा भी मुश्किल नहीं लगेगा, बल्कि उसमें आपको अपनी ताकत बढ़ी हुई लगेगी और आपकी अंतर आत्मा आनंदित होगी कि मैंने कितना अच्छा सोचा। और ये भी सोचने की आपको जरूरत नहीं लगेगी कि मैं कितना अच्छा सोचती हूँ, नहीं तो इससे भी आप धीरे धीरे भारी हो जाएंगे कि मैं तो अच्छा सोच सोच के थक गई, ये फिर भी नहीं बदलता। मैं थक क्यों गई, मैंने तो कुछ ऐसा किया नहीं, ये तो मेरी नेचर है। और जो चीज नेचर में होती है उसमें कभी थकावट नहीं होती किसी को। जैसे किसी की नेचर मुस्कुराना होती है, किसी की बिल्कुल नहीं होती। अच्छे भले फंक्शन में भी बैठा होगा ना, डांस गाना, तो भी मुस्कुराएगा नहीं। क्यों? उसकी नेचर ऐसे ही गंभीर रहने की है, उसको उसी में ठीक लग रहा है। तो ऐसे हमारी इतनी नेचुरल नेचर पॉजिटिविटी की हो जाए कि हमें उसमें किसी प्रकार की कोई मेहनत भी महसूस नहीं होगी। तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि कोई इसके साथ हमारा कर्म का खाता होगा। इसीलिए भगवान को त्रिकालदर्शी कहा जाता है कि वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को जानता है। तो हमको भी भगवान कहता है कि आपको भी मालूम है कि एक भूतकाल होता है, हाँ, पास्ट कहलाता है, एक प्रेजेंट है और एक फ्यूचर है। आप प्रेजेंट में समझ रहे हो सारी बातों को, प्रेजेंट में जी रहे हो, प्रेजेंट को ही ठीक करते जाओ तो फ्यूचर अपने आप ठीक हो जाएगा। उसकी चिंता आप नहीं करो, क्योंकि जैसा बीज बोया है वो फल एक दिन आएगा ही आएगा। वो अलग बात है कि वो फल अपने समय पर आएगा। अब ये भी बात सब जानते हैं, हाँ, हमें ही सुनाते हैं कहीं, बहन जी समय से पहले, भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। तो मैं कहती हूँ ये आपने यूज किया? जिस समय नहीं मिलता उस समय आपको याद रहा कि ये तो समय पर ही मिलेगा, आज नहीं, समय पर ही मिलेगा। उस समय आपने ये याद रखा जब आपको अधिकार नहीं मिला, तब हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है। और स्पिरिचुअलिटी मीन्स ही कि अपने आप को उसी से ही एम्पावर करना। तो शांति एक शक्ति है, शांति एक बहुत बड़ी शक्ति है। आप देखिए जितने भी रिसर्च हुए हैं साइंटिस्ट, उनका आदिकाल देखिए, उनकी रिसर्च की स्टार्टिंग देखिए, हर एक का ये एक्सपीरियंस है कि हम साइलेंस में थे, हमको ये रिसर्च टच हुई, हमने ये एक्ट देखी, उस पे हमारा माइंड चला, उस पे हमने कंसंट्रेशन की, तो ये रिजल्ट सामने आ गई। तो साइलेंस आविष्कार की जननी कही गई है। तो वो तो फिर भी साइंस और संसारिक साधन ही बने, लेकिन ये साइलेंस तो इमॉर्टल है, क्योंकि आत्मा की शक्ति है और आत्मा को परमात्मा से शक्ति मिल रही है, क्योंकि वो शांति का सागर है। तो साइलेंस में बहुत पावर समाई हुई है, जिससे आपके जीवन में टॉलरेंस पावर आ जाएगी, जजमेंट पावर आ जाएगी, अन्य सब पावर्स आती चली जाएंगी। तो हमें अपने जीवन को ऐसे भी समझना चाहिए कि सहन करना भी हमारी एक शक्ति है, उससे भी जीवन में शांति रहती है। कई ये सोचते हैं क्यों, मैं ही क्यों सहन करूं? अरे थोड़ा सा सहन घर को बना के रखता है, जीवन को बना के रखता है, जीवन को आगे ले जाता है। कोई भी आप देखेंगे जीवन में अगर खुश हुआ है, सेटिस्फाइड हुआ है, तो उसने अवश्य कहीं ना कहीं जीवन में सहन किया है, ऐसे ही नहीं हुआ है, जरूर सहन किया है। 70वीं शताब्दी की एक मिसाल आती है जापान के एक राजा की, उसका नाम मुझे भूल रहा है। तो वो एक मंत्रिमंडल में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो राजा को सबने कहा कि एक मंत्री जो वृद्ध हो गए हैं और अभी उससे रिटायर्ड हो चुके हैं, आप उनसे जाकर के कुछ राय सलाह कीजिए। तो राजा ने कहा क्यों, उनसे क्यों किया जाए? कहा कि उनका इतना बड़ा परिवार है और सभी मिलाकर 1000 से भी ऊपर सदस्य होंगे, लेकिन आज दिन तक उनके घर की कोई भी बात खबरों में नहीं आई, जबकि वो इतने बड़े मंत्री होकर के गए। तो राजा ने कहा ठीक है, और राजा उनके घर पहुंचे, तो राजा के अचानक पहुंचने पर सबको आश्चर्य भी लगा, लेकिन राजा का स्वागत भी किया, आभगत की। तो राजा ने अपनी बात जो करनी थी तो वो थोड़ा इशारा दिया कि मुझे मंत्री जी से ही बैठना है। तो वो तो वृद्ध थे, बिस्तर पर लेटे हुए थे, ज्यादा कुछ बातचीत भी नहीं कर सकते थे। राजा की कुर्सी उनके पास रखी गई और राजा ने गुप्त रीति से कहा, मैं आपसे कुछ सलाह लेने आया हूँ, ऐसा ऐसा है और मैंने सुना है कि आपके परिवार में इतनी सारी बातें होते हुए भी कभी भी कोई बात बाहर नहीं आई। तो मंत्री ने उसी समय बेल की, सर्वेंट आया, इशारे से पेपर पेन मांगा और लिखना शुरू किया, क्योंकि वो जब बोलते थे तो स्पष्ट नहीं होता था क्या बोल रहे हैं, बड़ी आयु में हो जाता ना टांग ऐसे। तो लिख करके वो पन्ना राजा के हाथ में रख दिया। राजा ने जब वो पन्ना देखा, उस पर सारे ही पन्ने पर एक ही शब्द बार बार लिखा हुआ था, सहन 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 सहन, बड़ा बड़ा लिख करके वो पन्ना भर दिया। तो राजा सोच में पड़ गए और फिर कहा, अच्छा मैं समझ गया आपका इशारा। तो राजा ने उसके बाद मंत्रिमंडल में उस चर्चा को ही छोड़ दिया। तो बहुत सारी बातों का हल, बहुत सारी बातों को समझने से शांति, सहन करने से आ जाती है, जो आजकल सबको बहुत मुश्किल लगता है। घर परिवारों में अशांति का कारण ही यही है वास्तव में। क्या ये थोड़ा है कि घर में खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, रहने को नहीं है, सब कुछ है। आप सब ऐसे परिवार बैठे हैं, दुनिया में करोड़ों ऐसे ही परिवार हैं, लेकिन अशांति का वायुमंडल बना दिया चारों ओर छोटी छोटी बातों से, घर का वायुमंडल बना दिया ऐसा सारा, तेरा मेरा मेरा तेरा तू मैं ये वो छोटा बड़ा सब। जरा से एक सहन करने से घर इतना सुखद और शांत हो सकता है और उसका वायुमंडल आसपास बनता है और सारे परिवार, सारा समाज है, सारा समाज सारी दुनिया है। तो हम खुद ही कई बार अपने ही कारण से, थोड़ी सी स्ट्रेंथ ना होने से, थोड़ी सी टॉलरेंस ना करने से खुद को भी अशांत करते रहते हैं और सारे वातावरण को पीसलेसनेस बना देते हैं। तो ये शक्तियां भी हमारी साइलेंस पावर से आती हैं। इसलिए कहावत है ना, एक चुप सौ सुख। सुनिए ये बात, किस किस ने सुनी है, हाथ खड़ा करो। कईयों ने नहीं सुनी। एक चुप सौ सुख, इसका भावार्थ समझते ही होंगे कि बहुत सारी बातों का हल चुप रहने से ही निकल आता है। और अक्सर महान आत्माएं, आपने ये तो सुना ही, देखा ही, और हमारे शास्त्र भी बताते हैं, इंडियन फिलॉसफी भी बताती है, जीवन के अनुभव भी बताते हैं कि उन्होंने मौन रखकर ही बहुत कुछ ग्रहण कर लिया, बहुत कुछ ग्रहण कर लिया। और जितनी बुद्धिजीवी आत्माएं होती हैं, वो 10 शब्दों की जगह 2 शब्दों से काम निकाल लेती हैं। तो हम अपने आप को ही अपने अंदर ऐसे शांति की पावर क्रिएट कर सकते हैं सहज ही। और जब बुद्धि का कनेक्शन, मन का कनेक्शन, पावर हाउस परमात्मा से लगाते हैं, तो जीवन में शांति तो सहज ही एक हमारी इतनी बड़ी पावर बन जाती है, जो हम कितनी सारी घटनाओं से, कितने सारे ऊपर नीचे होने वाली बातों से अपने को सहज सेफ कर सकते हैं। और लास्ट बात सुनाऊंगी, एक छोटी सी स्टोरी सुनाते हुए, कि हर बात में शुभ को ही निकालो, पॉजिटिविटी को निकालो, ये एक आर्ट बना लो अपनी। हमारी दादी जी जो चीफ रहे इस संस्था के, हृदय मोहिनी दादी जी, वो हम सबकी जब क्लास कराया करते थे तो एक बात कई बार कहते थे गुलाब सबको बड़ा पसंद है, गुलाब का फूल पसंद है ना, कोई भी आपको देता कितनी खुशी से लेते हैं, देखते हैं लगा हुआ तो भी हाँ खुशबू भी आती है। तो कहा देखो गुलाब में भी इतना बड़ा गुण है, इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है कि उसको इतनी गंदी बदबू वाली खाद डालते हैं हम, हाँ जब उसको खाद देते हैं ना गुलाब के पौधे को कि अच्छा जल्दी पनपे सुंदर गुलाब आए, तो वो कहते हैं बहुत सड़ी हुई स्मेल आती है उसमें से। खाद तो सारी ऐसी होती है लेकिन वो खास कुछ ऐसी बनाई हुई होती है, परंतु वो क्या देता हमको, गुलाब जब बन के निकलता है कितना सुंदर होता है, कितनी खुशबू देता है, मिला उसको क्या, कैसी खाद बदबू वाली, और दिया उसने क्या, उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया एकदम, देखो बदल दिया उस बदबू को खुशबू में बदल दिया, कितनी बड़ी कला है, कितनी बड़ी ताकत है उस एक पौधे के अंदर, जड़ है जो कि। तो हम तो चेतन आत्माएं हैं, समझदार हैं, आप सब ज्ञानी हैं, बुद्धिजीवी हैं, आप सब कुछ समझते हैं, तो क्या मैं ये ताकत आत्मा नहीं रख सकती हूं कि कोई कुछ भी कर रहा है मुझे उसके रिटर्न में क्या करना है। तो हर बात से चाहे वो कितनी नेगेटिव है, कितनी भी आपके फेवर में नहीं है, ऑपोजिट है, अशांति वाली है, अपमानित करने वाली है, कैसी भी है, कैसी एनी टाइप ऑफ, आपको उसमें से पॉजिटिविटी ही निकालनी है। तो एक बारी एक राजा था, समय को देखते हुए उसकी उंगली कट गई, आप सबने सुनी हुई होगी ये स्टोरी, ईश्वरम यत करोति शोभनम करोति। तो मंत्री जो उसके साथ हर समय रहता था, उसके साथ काफी राजा की मित्रता भी थी और मंत्री के हिसाब से भी था, तो मंत्री बहुत अनुभवी था और सब कुछ राज कारोबार का भी अनुभवी था, जिंदगी का भी। तो उसने बड़े स्नेह सम्मान से राजा से कह दिया, क्या हुआ उंगली कटी तो इसमें भी अच्छा ही है। लेकिन राजा को वो टॉलरेट नहीं हुआ, उस समय राजा एकदम अपनी राजा की कॉन्शियस में आ गया कि एक मंत्री और मुझको कह रहा है मेरी उंगली कट गई, मुझे दर्द हो रहा है और कह रहा अच्छा हुआ। तो राजा उस कॉन्शियस में एकदम सजा सुना दी और दरबान को कहा इनको जेल में डाल दो। राजा को ऑर्डर तो ऑर्डर ही है, जेल में डाल दिया गया। और राजा जो है वो उस आवेश में फटाफट घोड़ा उठाया और शिकार खेलने चला गया। वैसे भी जब कोई ऐसी बातें होती है ना अचानक जो अच्छी नहीं लगती है, मनुष्य आवेश में आ जाता है, फिर वो कोई ना कोई कोई टीवी खोल के बैठ जाएगा, कोई कुछ खाने चले जाएगा, कोई घूमने कोई लड़ना ही शुरू कर देगा, कुछ ना कुछ रिएक्शन होता ही होता है। तो राजा क्योंकि अक्सर शिकार खेलने उस मंत्री के साथ ही जाता था, आया आवेश में तो उसने ना किसी को कोई सूचना दी ना कुछ, बस ड्रेस चेंज की, फटाफट घोड़ा उठाया और भाग गया। तो जब वो निकल गया शिकार के लिए, चलता गया रास्ता भटक गया, जंगल की ओर पहुंच गया, तो जंगल घने जंगल की ओर पहुंचा तो वहां कोई डाकुओं का गिरोह था और वो इस इंतजार में थे कि यहाँ कोई प्राणी मिले, और वो देवी को सजाकर बैठे थे कि उसकी बलि चढ़ जाए। बस वो जैसे देखा एक घोड़े पे आदमी आया है, अब उनको तो ये मालूम नहीं था ये राजा है, और वो था भी उस समय शिकार की ड्रेस में, तो कोई समझे भी क्या, उन्होंने उसको पकड़ा और तैयार करके और देवी के आगे खड़ा कर दिया और अपने मुखिया सरदार को बुलाया कि आओ आज तो बहुत अच्छा मौका हो गया, एक इतना अच्छा प्राणी मिल गया हट्टा कट्टा, और देवी तो आज बहुत प्रसन्न हो जाएगी। तो मुखिया आया तलवार लेके, तलवार उसने उठाई और वो तलवार राजा के गले पे अभी लगाने ही वाला था कि उसकी नजर राजा की उंगली पर पड़ गई। अब वो उंगली कटी हुई थी और देवी अंग भंग स्वीकार नहीं करती, तो उस मुखिया को तो बहुत गुस्सा आ गया। उसने जोर से लात मार के राजा को दूर फेंक दिया, कहा ये अंग भंग बलि हमको नहीं चाहिए। अब राजा बेचारा तो बेहोश पड़ा हुआ है, काफी देर बाद उसको होश आया, फिर आया ओहो आज तो मेरी जान बच गई, कैसे बच गई, इस कटी हुई उंगली के कारण बच गई, नहीं तो मेरी तो आज गर्दन काट दी जाती। जैसे तैसे होश संभाला, घोड़े पे चढ़ा, वापिस आया राजमहल में, स्नान पानी किया। उसको आया कि अच्छा वो मंत्री ने कहा था उंगली कट गई, अच्छा हुआ। तो दरबान को कहा तुरंत जेल का दरवाजा खोलो, मंत्री को मेरे पास लेके आओ, निकालो उसको जेल से बाहर। मंत्री जेल से बाहर आ गया, वो अपनी उसी आराम की अवस्था में निश्चिंत राजा के सामने आके एज इट इज खड़ा हो गया जैसे पहले था। तो राजा को बड़ा आश्चर्य लगा कि मैंने तो इसको इतना अपमानित किया, इतना जेल में डाला। तो राजा ने पहले तो अपनी कहानी सुनाई कि मंत्रीवर आज मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो मंत्री मुस्कुराते रहे, चुप रहे। तो राजा बोले आपने ठीक ही कहा था कि अच्छा हुआ, कोई ऐसी बात नहीं, उंगली कट गई, अच्छा ही हुआ। तो सचमुच इस उंगली कटने के कारण ही मैं बचा, नहीं तो मेरे तो गला काट दिया होता। तो राजा ने कहा लेकिन मंत्रीवर एक बात है कि चलो मेरा तो भला हो गया, परंतु तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ कि मैं तुम्हारा राजा और तुम्हारा मित्र होते हुए भी तुम्हें इतना अपमानित कर दिया और तुम्हें जेल में डाल दिया। तो मंत्री जी कहते हैं राजन ये तो और भी अच्छा हुआ, क्यों नहीं तो आप मुझे अपने साथ ले जाते, क्योंकि हमेशा ही साथ ले जाते थे और वो आपको छोड़ के मेरी बलि चढ़ा देते, तो ये तो कितना अच्छा हुआ। तो राजा को तब समझ में आया कि ओहो उस टाइम तो मैंने इस बात को समझा ही नहीं, और कितने बाद में समझ में आया। तो कहने का भावार्थ ये है कि कई बार हमारे आगे ऐसी घटनाएं घटती हैं, ऐसी बातें आती हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, हमें बड़ी खराब लगती है, हम उसे स्वीकार नहीं करना चाहते। कई समझाते भी हैं कि भाई जी मान जाओ, बहन जी मान जाओ, घर में पति पत्नी भी एक दो को समझाते हैं, आप अपने कोर्ट में भी केसेस में भी समझाते होंगे, लेकिन दूसरा सुनने को तैयार नहीं। कुछ समय बाद एहसास होता है अरे जो हुआ था वो ठीक ही था। इसलिए हमेशा हमें अपने आप को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए कि कोई भी परिस्थिति हमें हलचल में ना आने दे, हैरान नहीं करे। हाँ समय से अपने समझदारी से हम जरूर चले, ऐसा नहीं है उससे नहीं चले, लेकिन हर बात में हमारा कोई कल्याण है या हमारा कोई कर्म का खाता छिपा हुआ है, जब हम इस नॉलेज से समझकर चलते हैं तो हम हलचल में नहीं आते। कोई भी प्रकार की हमें उस समय परिस्थिति हिला नहीं सकती, हम इतनी चिंता में नहीं जा सकते कि नींद ही ना आए। तो ऐसा जीवन जो बहुत ही रेस्टफुल मींस दिमाग के रेस्ट का, मन के रेस्ट का, बुद्धि के रेस्ट का, शरीर को तो रेस्ट आप देते ही हैं, जितना शरीर को चाहिए शरीर ले भी लेता है, मांग ही लेता है, परंतु मेरी अंतर आत्मा को जो शांति चाहिए, रेस्ट चाहिए, वो इससे कई गुना पदम गुना जरूरी है। और मुझको उसको उसी ही अवस्था में ऐसे शांत चित्त स्थिति में रहना जीवन का असली जीना है, असली सुख है। शांति मेरा गहना है, शांति मेरी शक्ति है, शांति मेरी प्रॉपर्टी है, जो भगवान की दी हुई है, क्या मैं उसे भी गंवा दूं? तो ये अधिकार मुझको अब भगवान दे रहा है, इसलिए मुझे अपने जीवन को ऐसे शांतमय, चिंताओं से मुक्त और खुशनुमा रखना है, सदा ही हल्के रखना है, बोझ में नहीं जीना। और वही जीवन वास्तव में सफलता वाला जीवन कहा जाता है और सुखी जीवन कहा जाता है। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप सबके लिए हमारे मन में बहुत बहुत स्नेह है, सम्मान है, शुभ भावनाएं हैं। आप आगे बढ़ते रहिए, सदा प्रसन्न रहिए, चिंता मुक्त रहिए, बोझ रहित शांत। रात को जब भी सोइए, अपने मन का सारा बोझ उस प्रभु को देकर सोइए, क्योंकि मालिक वो है। और जब मालिक को दे दिया, वो इतना संभाल लेगा कि वो आपकी उस समस्या का हल कर देगा, आज नहीं तो कल, जब भी समय पर होना होगा। पर मैं अपने मन को हल्का रख कर रहूं और निश्चिंत होकर विश्राम भी करूं, सेवा भी करूं और अपने जीवन के लक्ष्य को जो मुझे चाहिए और जो भगवान का कहना है वैसे बनाता चला जाऊं। ओम शांति।